संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए हमारी चिंतन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए उसकी चर्चा चल रही है। अभी हमारी जो चिंतन प्रक्रिया है वो निरंतर परोन्मुख रहती है। हम दूसरों के बारे में ही सोचा करते हैं और हमारी जो चिंतन प्रक्रिया है वो वैराग्योन्मुख होना चाहिए, और वो वैराग्योन्मुख नहीं होकर रागोन्मुख होती है। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारा जो चिंतन से खाली तो कोई जीव कोई मनुष्य कभी रहता ही नहीं है, इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है। सवाल चिंतन का सब्जेक्ट बदलने का है, ध्यान का ध्येय बदलने की आवश्यकता है। चिंतन और ध्यान से तो कोई खाली नहीं है। अनादिकाल से इस आत्मा ने जिन पदार्थों में अपनापन स्थापित कर लिया है ये उन्हीं के बारे में सोचता है, सोचना भी चाहिए। इसलिए सारे जगत को अपन ने दो भागों में बांटा था। एक भाग में स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और अपना ये शरीर, और इन सब का अपन ने एक नाम रखा था, उसका नाम था संयोग, है ना, और दूसरे का नाम रखा था स्वभाव। स्वभाव माने मैं अपना आत्मा, और संयोग में और सारी चीजें ये असमाहित हो जाती हैं। तो ये सारे संयोग जिन पर तू मूर्छित हो रहा है, जिन्हें तू अपना मान कर सुखी होने की कल्पना कर रहा है और ये मान रहा है कि किसी भी तरीके से ये भाई पदार्थ मेरे हो जाएं, मुझे प्राप्त हो जाएं, इनका मैं स्वामी हो जाऊं, इनका मैं कर्ता भोक्ता हो जाऊं, तो मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तक हमारे चिंतन का आधार ये रहा है। इसलिए जब भी हम सोचते हैं इन बाह्य पदार्थों की प्राप्ति के बारे में ही सोचते रहे हैं, उसके बारे में ही उपाय करते रहे हैं, अनेक प्रकार के रुपया पैसा कमाना, देश प्रदेश में जाना, हल्का भरा काम करना, न्याय अन्याय का विचार नहीं करना, किसी भी तरह से ये चीज हमें प्राप्त हो जाए। जरा आप कल्पना करो कि यदि हमें ये पता चल जाए, जिसके लिए हम इतने मर रहे हैं, मिट रहे हैं, अपने को लग रहे हैं, वो यदि वो चीज़ हमारे किसी काम की नहीं हो तो क्या होगा। समझ लो रास्ते में हमको 1,000 रुपये का नोट पड़ा दिखाई दिया, और हम जानते हैं कि 1,000 रुपये का नोट कितना कीमती है, इसमें 1,000 की बहुत चीज़ें भोग सामग्री हमारे को प्राप्त हो सकती हैं, तो हम उस पर झपटे, उसके लिए हमने जो कुछ भी सच झूठ की चिंता नहीं करी, चोरी चपोटी की चिंता नहीं करी, कोई क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं की, लेकिन बाद में ये देखा कि ये तो नकली नोट है, ये तो वो कागज का नोट है जो चूरन के साथ बिकता है, क्यों, बच्चों के खेलने का नोट है, तो हम आपकी स्थिति क्या होगी। 1 सेकंड में अपना चित्त वहां से हट जाएगा ना, उसके बारे में कुछ भी सोचेगा, और सोचेगा तो यही सोचेगा कि मैं कैसा मूर्ख हूं जो इसके पीछे पागल हो गया था। इसलिए कहते हैं जितने ये संयोग हैं इनके बारे में जो तूने आज तक चिंतन किया है वो सिर्फ इस टाइप का ही किया है कि इनसे तुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और आचार्य कहते हैं कि तेरा चिंतन ऐसा होना चाहिए कि इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है, ये क्षण भंगुर हैं। यहां से वो बात शुरू करते हैं कि अपने चिंतन की प्रक्रिया को हम उसे एकदम बदल दें। तो काय के बारे में सोचे कि अभी तक काय के बारे में सोचा गया, संयोगों के बारे में। तो हम कहते तुम संयोगों के बारे में ही सोचो, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो आदत है वो इन संयोगों के बारे में ही सोचने की है। बस थोड़ा परिवर्तन कर दो, थोड़ा चेंज कर दो। कि क्या चेंज कर दें? थोड़ा सा कि सिर्फ इतना चेंज कर दो कि ये सारे संयोग क्षणभंगुर हैं। क्षणभंगुर के दो अर्थ होते हैं, एक तो सीधा सच्चा अर्थ है कि ये क्षण क्षण में बदलती परिस्थितियां हैं। शास्त्रीय भाषा में कहें तो प्रति समय पर्याय पलटती है। लौकिक दृष्टि से हम ये कहें तो हर चीज जो है प्रति समय परिवर्तनशील है, उसका नाम है क्षणभंगुर। एक कोई भी जो संयोग है वो एक क्षणिक संयोग है, दूसरे ही क्षण वो चला जाने वाला है। और क्षणिक का थोड़ा लंबा अर्थ ऐसा ले लें तो ऐसा भी ले सकते हैं कि भाई अब 60-70 वर्ष की उम्र हमारी हो गई है, अब हम ज्यादा नहीं जिएंगे और 10-5 साल जिएंगे। तो हम क्षणभंगुर का अर्थ है ये 60-70 वर्ष भी लगा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या मरना जरूर होगा, क्या 2 साल के, 5 साल बाद के, 10 साल बाद के, 50 साल बाद, लेकिन मरना पड़ेगा। आखिर ये संयोग का भी वियोग होगा। भले ही तुम इतना बड़ा बना लो क्षणभंगुर शब्द का अर्थ, लेकिन कम से कम इसे तुमने बिल्कुल पक्का परमानेंट मान लिया है। एक दफे उस पैसे तो चुको। ये जो अपने जितना संयोग है शरीर और शरीर के साथ में स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश और गांव, इनके लिए जो अपन इकट्ठा जोड़ते हैं, तो जोड़ यहां तो जोड़ने के बारे में चिंतन करने की बात है, यहां जोड़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जोड़ना तेरे हाथ में है ही नहीं। हमारे चिंतन का आधार इनकी स्थिरता हमारे लिए बनती है, क्या संयोगों की। तो मैं आपसे पूछता हूं, छाती पे हाथ रखकर आप बात बताइए कि आप इस सारे संयोगों को सिर्फ 10-5 साल ही के लिए चाहते हैं कि आप 100-200 वर्ष के लिए, 1000-2000 वर्ष के हिसाब से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगन मल जी बोलिए। अब मकान की नींव रखते हैं और आप 70-80 वर्ष की उम्र हो गई है, तो आपकी जिंदगी भर के लिए चल जाए उसी हिसाब से रखते हैं? बोलो कि आगे की इतनी 3 पीढ़ियां, क्यों कि काम ये आ जाए उसके हिसाब से नींव रखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्षणभंगुर, ये 60-70 वर्ष का क्षणभंगुर भी कोई साधारण बात नहीं है हमारे लिए, वो भी कहां स्वीकृत है। क्यों सब हम अपने सोचे, विद्वान लोग सब सोचे। एक विद्वान से आज मेरी चर्चा हो रही थी, बड़े विद्वान हैं, बहुत गंभीर हो गए, कह रहे थे न मालूम ये समाज का क्या होगा, कैसा होगा, ऐसी हो रही है, वो हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैंने फलां चीज को तो ऐसा कर दिया है, कम से कम 100-200 वर्ष तक वो तो कायम रह जाएगा, कोई शास्त्र कोई किताब इतने ये तो कायम तो रह जाएगी, इतना तो मैंने पक्का इंतजाम कर दिया है। क्यों तुमने खुद का शरीर के संयोग का कितने दिन का पक्का इंतजाम किया है? बोलो कोमल जी, हैं किया होगा ना कुछ ना कुछ पक्का इंतजाम। अरे जब तू ही नहीं देने वाला है तो ये संयोग, ये किताब यदि कुछ काल तक रह जाएगी तो क्या, और नहीं रहेगी तो क्या? मैं आपसे पूछ, मैं अपनी बात करता हूं, आपकी बात जाने दो। कभी ये जो मैंने साहित्य लिखा है तो ये मेरे मरने के बाद में भी 1000-2000 वर्ष तक कायम रहे ऐसी भावना नहीं रखता हूं मैं, करता हूं मैं, कोई ऐसा इंतजाम नहीं करना चाहता हूं कि उसके बाद भी कुछ दिनों तक तो कम से कम ये क्यों ये चले है। मन के अंदर कोई चोर बैठा है ऐसा क्या नहीं बैठा है ना। वो ये कह रहे हैं कि ये जो संयोग हैं इन संयोगों की तू क्षणभंगुरता का विचार कर, एक गारंटी से अनंत काल तक स्थिर नहीं रहने वाले हैं। पहला पॉइंट, 100 साल रहेंगे 200 साल रहेंगे कि नहीं पहले तो नक्की करके अनंत काल नहीं रहेंगे। क्यों? तू तो अभी तक तो अनलिमिटेड काल की बात कर रहा है, अभी तक तेरी जो कल्पना लोक का विचरण है वो अनलिमिटेड काल तक का है। अब 100 वर्ष का 50 वर्ष का 5 वर्ष का 5 मिनट, बात तो स्थिति ऐसी है शास्त्र के हिसाब से एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। तो आचार्य कहते पहली जो अनित्य भावना है उसमें तू इन सारे संयोगों को, इन्हें शास्त्रीय भाषा में पर्याय भी कहते हैं, असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं ना शरीर के संयोग को, इनको पर्याय भी कहते हैं, समझे ना आप। तो कहते ये जो संयोग हैं ये समझ लो देह का संयोग है, ये अनलिमिटेड काल तक रहने वाला नहीं है। किसी का महीने में 2 महीने में साल में 2 साल में 5 साल में गारंटी से जाने वाला है। यहां से उन्होंने बात आरंभ की अनित्य भावना में कि वो ये कहते हैं कि इन संयोगों की अनुत्तता का विचार कर। सादसी बात तो नहीं है, देखो इसमें संयोगों की हर बात पर विचार करना है, संयोगों की अनित्यता पर विचार करना है, अशरणता पर विचार करना है, असारता पर विचार करना है। क्यों? क्योंकि पहले तो जब हम इससे कहते हैं कि अनंत काल तक नहीं रहने वाला है, 100-200 साल तक तो रहेगा, कि 100-200 साल भी नहीं रहेगा तो 10 साल रहेगा 20 साल रहेगा, कि 10 साल नहीं तो 5 साल तो रहेगा, यानी कहीं ना कहीं आके टिक कर वो ये कहना चाहता है कि जितने दिन मैं टिकूंगा उतने दिन तो शांति से रहने दो भले आदमी, तुम मौत की याद दिला दिला कर इस क्षणभंगुर को याद दिला दिला कर क्यों, तो हमारी जो क्षणिक शांति है उसको भी क्यों लेने की कोशिश कर रहे हो। नहीं समझ में, फिर कहता हूं देखो कि हमें अभी कोई चीज प्राप्त हुई समझ लीजिए, तो वो ये कहते हैं कि अभी हमको समझ लीजिए कि हमको बताया दिया किसी ज्योतिषी ने बता दिया किसी तरह कि आप 5 साल जिंदा रहेंगे, तो वो कहता है कि 5 साल में तुम रोजिना हमें याद दिला दिला करके कि ये सारे संयोग क्षणभंगुर हैं, तुम 5 साल तो शांति से रहने दो भले आदमी। क्या समझिए ना, क्योंकि ये 5 साल जो हम सुख भोगेंगे वो 5 साल बाद हमारे संयोग विनष्ट जाएंगे, इस आशंका में 5 साल भी मुफ्त में चले जाएंगे। द्वारका, द्वारका नगरी की बात है ना, नेमिनाथ भगवान ने कह दिया था ना कि द्वारका नगरी 12 बरस बाद जल जाएगी और दीपायन मुनि का क्रोध निमित्त होगा और शराबबंदी उसमें निमित्त बनेगी। तो इसमें भी कल्पना करो कि ये जो बताया गया और सारी जनता ने सुनी, तो इन दो बातों में बताना ठीक था कि नहीं बताना ठीक था, जरा सोच रहा हूं, क्योंकि बताने से एक खतरा हो सकता है कि जो आदमी 12 वर्ष तक शांति से निराकुल भाव से रहते, अब उनकी वो शांति 12 साल पहले ही भंग हो गई, उन्हें 12 साल पहले मौत दिखने लगी। क्यों? निराकुल भाव से जो 12 साल वो रह करके काट देते वे 12 साल भी अब हाय राम मर जाएंगे मर जाएंगे। वो देवताओं की 6 महीने पहले से माला मुरझाती है ना, तो नेमिनाथ ने ऐसा बोल के अपनी सभा की श्रोताओं की माला 12 साल पहले से मुरझा दी। क्यों? जो संकलेश उनको जब होता वो 12 साल पहले से शुरू हो गया। तो देवताओं के तो ऐसा है कि उनको तो मन में संकल्प विकल्प करने के अलावा और कोई चांस है ही नहीं, चांस नहीं है माने वो संयम तो धारण कर ही नहीं सकते हैं। और मनुष्य गति में तो इतना है कि नेमिनाथ की ये बात सुन के 12 साल की बात चली जाएगी तो हमें वैराग्य हो जाए, क्यों तो हम अणुविद धारण कर लें, महाविद धारण कर लें, मनुष्य गति में इतना चांस तो है, देव गति में तो वो भी चांस नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं ये तो मरेंगे मर जाएंगे, हमारा माथा खराब मत करो, रोजीना जी याद दिला दिला करके कि राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये बात मौत की याद दिला दिला करके तो हमारी शांति क्यों भंग करते हो। तो आचार्य यहां कहते हैं कि इसके लिए जो तू कहता है कि इतने दिन हमें शांति से रह लेने दो, तो दूसरी भावना में ये कहते हैं कि इस जगत में जितने दिन तुम रहोगे मना लो तो उतने दिन भी शांति कहां है, क्या तुम्हें शांति से रह लेने दो तो उतने दिन भी शांति कहां है, क्या जो हम ये सोच रहे हैं कि जितने दिन है उतने दिन तो शांति से रहने दो, तो ये संयोग न केवल अनित्य है, ये निश्चित रूप से बदलेंगे, ये बात तो पक्की है ही। तो जो अपने जो रोजाना 12 भावना पढ़ते हैं कि राज है राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो इन 12 भावनाओं के चिंतन की प्रक्रिया की पहली एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जब हम चिंतन करें तो उसमें से समता रूपी सुख जगना चाहिए, क्योंकि छड़ाला में लिखा ना कि इन्हें चिंतत सम सुख जागे जिमी ज्वलन पवन के लागे, कि इनके चिंतन करने से समता रूपी सुख जगता है। तो जब भी आप इस चिंतन करें तो उसमें बार बार थर्मामीटर लगा करके देखें कि वो समता रूपी सुख जग रहा है कि और अशांति बढ़ रही है, समझे ना, यदि वो समता रूपी सुख जग रहा हो तो समझ लेना 12 भावना का चिंतन हो रहा है, और समता रूपी सुख नहीं जग रहा है तो समझ लेना गाड़ी लेन पे नहीं। अब अपन सोचें इस संदर्भ में कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बड़े बड़े राजा हैं, राणा हैं, छत्रपति हैं, हाथियों पर बैठने वाले हैं। अब आज पुराने जमाने में हाथी का की सवारी होती थी, तो हाथियों पे जो सवारी निकल के निकलते थे वो तो बहुत बड़े लोग होते थे, और उनके पास अपने जिंदा रहने के बड़े बड़े इंतजाम होते थे, फौज फांटा होते थे, वैद्य डॉक्टर होते थे, दवाइयां होती थी। हाथन के असवार माने हाथियों पर बैठने वाले, अब आज की दृष्टि में हम कह दें कि बहुत से बहुत कार में बैठने वाले, क्यों राजा राणा तो हम कह दें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री फटाफट अमेरिका में जाके इलाज करा के आ जाएं, क्यों इन सबको कि जिनको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध है और दवाई दारू की व्यवस्था भी, मेडिकल हेल्प भी उपलब्ध है, वे भी मर जाएंगे तो राजा राणा छत्रपति और हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन, इन सबको जब एक दिन मरना है क्यों तो हम कौन सी खेत की मूली है, इसका नाम है अनित्य भावना। लिखा कर मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप इस बात को बार बार बोलते हो, सोचते हो, पढ़ते हो, क्या ये बात सच्ची है कि मरना सबको एक दिन, कि हम सबको एक दिन ही मरना पड़ेगा, ये बात सच्ची है क्या? नहीं है सच्ची, ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या है कि भाई एक दिन का मतलब ये नहीं है कि एक दिन माने एक साथ, तो क्या मतलब है, ये मतलब है कि एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, माने अनंत काल तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, 2 साल पहले या 2 साल बाद, लेकिन एक ना एक दिन आपको अवश्य मरना होगा। यानी संयोग अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, ये पहली पक्की बात हुई ना। तक कोई हो, जो संयोग है वो वियोग लेके आया है, वो गारंटी से वियोग होगा। तो वो कहते हैं सबको एक दिन मरना पड़ेगा कि हाँ एक ना एक दिन के कब? यदि एक ना एक दिन आपने कहा है तो वो डेट भी बता दीजिए किस दिन। क्यों? तो उन्होंने कितना बढ़िया जवाब दिया, ये नहीं बताया 15 तारीख को आप मरेंगे, फला तारीख की, फला दिन, फला महीना, फलाना सन संवत, ऐसा कुछ नहीं बताया। क्यों बताते तो फिर और नई तकलीफ खड़ी हो जाती। कौन सी? वो जो नेमिनाट वाली, 12 वर्ष बाद मरोगे, अभी से रोना शुरू कर दिया। तो क्या जवाब दिया? उन्हें मालूम नहीं होगी भगवान को, सब मालूम था। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि अपनी अपनी बार, कि जब जिसका नंबर आएगा तब। बोलो, अब सोचो इसमें से हमें समता रूपी सुख जग रहा है कि दुख जग रहा है? इन चिंतत सम सुख जागे, ये शर्त है ना, कि इनके चिंतवन करने से समता रूपी सुख जगता है। जिन ज्वलन पवन के लागे, जिस तरह हवा लगने से अग्नि जलती है। तो एक दिन मरना पड़ेगा, एक दिन मरना पड़ेगा, हाय राम मरना पड़ेगा। जब हमारा ऐसा भाव हुआ तो हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे तो और घबराहट बढ़ गई, तुम्हें तो समता रूपी सुख नहीं जगा बल्कि कोई आकुलता और जगी है, इसलिए कहीं ना कोई मामला गड़बड़ है। समझे ना? मामला गड़बड़ क्यों है? क्योंकि हमें तो देख तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, मौत की बात सुनते ही तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ गया है, चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई है, माथे पे 3 साल पड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, तुम्हारे चिंतन की धारा अभी सही नहीं हुई। इसलिए जैन धर्म कहता है कि तुम 12 भावनाओं का चिंतन करो। हम भी अनंतता का चिंतन कर रहे हैं ना, लेकिन अनंतता में से रोना क्यों निकल रहा है? आनंद निकलना चाहिए था ना। तो कहते हैं कि देखो कि सबको एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन जब जिसका नंबर आएगा तब। इसमें से ये ध्वनि नहीं निकलती है कि हरेक का नंबर नक्की है, वो डेट फिक्स है। ये बात निकलती है कि नहीं निकलती? बोलो इस पंक्ति में से। यदि ये बात निकलती है तो उसका अर्थ स्पष्ट हो गया कि हर एक आदमी का जन्म और मरण की डेट फिक्स है, और दुनिया की कोई ताकत एक समय पहले मार नहीं सकती, और जब मरने लगेगा तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। ये जो बात निकलती है इससे हमारे चित्त में एक शांति आएगी। तो ये चिंतन की धारा हमारी ये होना चाहिए कि भाई चिंता करने की क्या जरूरत है, जब नंबर आएगा तब तो जाना ही पड़ेगा, और उसके पहले कोई ले नहीं जा सकता है, फिर दुख मनाने की क्या जरूरत है, तो सुख और शांति हो जाएगी। इसलिए कहते हैं एकदम चिंतन की धारा हमारी बदली तो सुख शांति आना हमारे जीवन में शुरू हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।